एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी के इस अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसे टॉपिक में उतर रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी का मतलब एक बहुत ही अहम हिस्सा है, हमारी याददाश्त, हमारी मेमोरी।
बिल्कुल, हम सब इसे रोज यूज करते हैं, पर शायद ही सोचते हैं कि ये कमाल की चीज आखिर काम कैसे करती है।
हाँ, और आज हम फर्गस क्रेग और लैरी जैकोबी के काम पर आधारित कुछ विचारों को देखेंगे। ये हमारी मेमोरी के बारे में जो आम समझ है ना, उसे काफी हद तक चैलेंज करते हैं।
अच्छा,
जैसे कि
ये सोचना कि मेमोरी कोई कंप्यूटर हार्ड ड्राइव है जहां बस फाइलें सेव होती जाती हैं, ऐसा नहीं है।
ये बात तो है, मेमोरी बहुत जरूरी भी है। सीखना, फैसले लेना, यहां तक कि हम कौन हैं, ये सब तो मेमोरी पर ही टिका है।
बिल्कुल, तो ये हार्ड ड्राइव नहीं है तो फिर क्या है?
वही तो।
चलिए पता लगाते हैं, लेकिन पहले उन विचारकों के बारे में थोड़ा जान लें जिनके काम की हम बात कर रहे हैं, फर्गस क्रेग और लैरी जैकोबी।
हाँ जरूर।
तो पहले हैं फर्गस क्रेग। ये स्कॉटिश कनाडाई कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब दिमाग कैसे काम करता है इसके विशेषज्ञ, और इनका नाम जुड़ा है एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत से, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग। ये एक तरह से क्रांतिकारी विचार था अपने समय में, इसने मेमोरी रिसर्च को एक नई दिशा दी।
लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग सुनने में थोड़ा भारी लगता है, आसान शब्दों में क्या मतलब है इसका?
आसान शब्दों में कहें तो बात यह है कि हम किसी जानकारी पर कितना गहराई से सोचते हैं, उसे कितना समझते हैं, यही तय करता है कि वो हमें याद रहेगी या नहीं, और कितनी अच्छी तरह याद रहेगी।
अच्छा, मतलब सिर्फ रटना काफी नहीं है?
बिल्कुल नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना या रटना उससे याददाश्त पक्की नहीं होती। हम इस पर आगे और बात करेंगे।
बात पर ज्यादा केंद्रित है कि हमारी मेमोरी की प्रक्रियाएं कब होश में होती हैं, मतलब कॉन्शियस, और कब बेहोशी में, अनकॉन्शियस।
होश और बेहोशी में मतलब?
मतलब कब हम जानबूझकर कुछ याद करने की कोशिश करते हैं और कब हमारी पुरानी यादें बिना हमें पता चले हमारे आज के व्यवहार पर असर डालती हैं।
अच्छा, जैसे कोई भूली हुई बात अचानक याद आ जाना या कुछ और?
हाँ, कुछ वैसा भी और उससे भी ज्यादा सूक्ष्म। उन्होंने इसे समझने के लिए तरीके भी बनाए, जैसे प्रोसेस डिसोसिएशन प्रोसीजर, और उनका एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है,
हाँ, कौन सा?
रातों रात प्रसिद्ध होना या बिकमिंग फेमस ओवरनाइट। इसमें पता चला कि कैसे हम किसी को सिर्फ इसलिए जाना पहचाना मान लेते हैं क्योंकि उसे पहले कहीं देखा था, भले ही याद ना हो कहाँ।
अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। तो मतलब क्रैग का फोकस है जानकारी अंदर कैसे जाती है, इनकोडिंग पर,
हाँ,
और जैकोबी का फोकस है जानकारी बाहर कैसे आती है, रिट्रीवल पर और उसके छुपे हुए असर पर।
बिल्कुल, दोनों मिलकर मेमोरी की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं एक तरह से, है ना।
हाँ, ये तो कमाल का कॉम्बिनेशन है।
चलिए अब इन विचारों के मूल आइडिया पर आते हैं। ये स्रोत कहते क्या है मेमोरी के बारे में?
देखिए, सबसे बड़ा आइडिया तो ये है कि मेमोरी कोई चीज नहीं है जिसे हम कहीं रखते हैं, जैसे अलमारी में कपड़े रखते हैं, वैसे मेमोरी नहीं रखी जाती।
तो फिर
मेमोरी दरअसल उन मानसिक कामों का, उन प्रोसेसेस का नतीजा है जो हम करते हैं, जैसे ध्यान देना, किसी चीज के बारे में सोचना, उसे समझना। मेमोरी इन कामों का एक बाई प्रोडक्ट है, एक अवशेष है।
मतलब मेमोरी एक क्रिया है, वस्तु नहीं। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। हम तो हमेशा कहते हैं मेरी मेमोरी अच्छी है या उसकी मेमोरी खराब है, जैसे वो कोई सामान हो।
सही कहा, और यही वो आम धारणा है जिसे ये स्रोत तोड़ते हैं। ये कहते हैं कि याद करना यानी रिकॉल करना एक एक्टिव प्रोसेस है। हम चीजों को दोबारा बनाते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं।
दोबारा बनाते हैं, हूबहू रिकॉर्ड नहीं करते।
नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब हम याद को दोबारा बनाते हैं तो उस पर हमारे उस वक्त के मूड का, माहौल का, हमें मिलने वाले हिंट्स का, सबका असर पड़ता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी यादें बदल सकती हैं, वो हमेशा 100% सच नहीं होती।
हाँ, काफी हद तक यही बात है। इसीलिए तो हमारी यादें कभी अधूरी होती हैं, कभी उनमें गलतियां होती हैं, और वो समय के साथ बदल भी सकती हैं। ये सोचना कि हमारा दिमाग एक वीडियो कैमरे की तरह सब कुछ परफेक्ट रिकॉर्ड करता है, ये एक मिथक है।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं, मेमोरी बनती कैसे है? आपने क्रेग के लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग की बात की थी।
हाँ, क्रेग और उनके साथी लॉकहार्ट ने कहा था कि प्रोसेसिंग के कई लेवल्स होते हैं। कुछ सतही होते हैं शैलो, कुछ गहरे होते हैं डीप।
सतही मतलब?
सतही मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजों पर ध्यान देना। जैसे कोई शब्द लिखा है तो बस ये देखना कि वो कैसे लिखा है, उसमें कितने अक्षर हैं, इस तरह की चीज है।
अच्छा, जैसे किसी का फोन नंबर देखा और बस नंबरों पे नजर डाली बिना ये सोचे कि ये किसका है या इसे कैसे याद रखूं?
हाँ बिल्कुल, ऐसी सतही प्रोसेसिंग से जो यादें बनती हैं वो ज्यादा देर टिकती नहीं। दूसरी तरफ है गहरी प्रोसेसिंग।
वो क्या है?
गहरी प्रोसेसिंग का मतलब है जानकारी के अर्थ पर ध्यान देना, उसे समझना, उसे अपनी पहले से मौजूद जानकारी के साथ जोड़ना।
तो उसी फोन नंबर वाले उदाहरण में ये सोचना कि ये किसका नंबर है, शायद उस इंसान से जुड़ी कोई बात याद करना या नंबर में कोई पैटर्न ढूंढना, ये गहरी प्रोसेसिंग हुई।
एकदम सही। इस तरह की गहरी मतलब वाली मीनिंगफुल प्रोसेसिंग से जो यादें बनती हैं वो ज्यादा मजबूत होती हैं, ज्यादा टिकाऊ होती हैं। इसीलिए कहते ना, रट्टा मारने से बेहतर है समझ कर पढ़ो।
हम एक साथ कई काम कर रहे हैं तो हम जानकारी को ठीक से प्रोसेस ही नहीं कर पाते।
तो फिर यादें कमजोर बनती हैं।
हाँ बिल्कुल, मल्टीटास्किंग करते हुए जो सीखते हैं वो अक्सर जल्दी भूल भी जाते हैं। ध्यान बटने से प्रोसेसिंग सतही रह जाती है।
समझ गया, तो गहरी प्रोसेसिंग जरूरी है। अच्छा, क्या यादों को मजबूत बनाने के और भी तरीके हैं?
सिर्फ गहराई काफी है?
नहीं, सिर्फ गहराई नहीं, दो और चीजें हैं जो बहुत मदद करती हैं। विस्तार यानी इलैबोरेशन और विशिष्टता यानी डिस्टिंक्टिवनेस।
विस्तार, इलैबोरेशन, वो क्या है? विस्तार का मतलब है नई जानकारी को सिर्फ समझना नहीं बल्कि उसके बारे में और सोचना, सवाल पूछना, उसे अपने पुराने ज्ञान से अच्छी तरह कनेक्ट करना। जैसे आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो सोचें कि ये मैंने पहले कहाँ पढ़ा था, ये मेरी जिंदगी से कैसे जुड़ता है। जितना ज्यादा आप उसके बारे में सोचेंगे, उससे अलग अलग एंगल से देखेंगे, उतना ही वो याद रहेगा।
अच्छा, और विशिष्टता, डिस्टिंक्टिवनेस।
विशिष्टता का मतलब है उस जानकारी को किसी तरह से अनोखा, यूनिक बनाना। जो चीजें भीड़ से अलग दिखती हैं वो आसानी से याद रहती हैं, है ना?
हाँ, ये तो है।
जैसे आप कोई लिस्ट याद कर रहे हैं और उसमें एक शब्द का रंग या फॉन्ट अलग है तो वो आपको ज्यादा याद रहेगा, या कोई जानकारी ऐसी है जो बहुत अजीब है या मजेदार है तो वो भी ज्यादा याद रहती है।
इसी से शायद वो सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट भी जुड़ा है।
बिल्कुल।
मैंने सुना है कि जो चीजें हमसे, मतलब खुद से जुड़ी होती हैं, वो ज्यादा याद रहती हैं।
बिल्कुल सही पकड़ा। जब हम जानकारी को अपनी जिंदगी से, अपने तजुर्बों से, अपनी भावनाओं से जोड़ते हैं तो वो प्रोसेसिंग बहुत गहरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम खुद अपने लिए सबसे खास, सबसे डिटेल्ड कॉन्टेक्स्ट है।
तो मतलब कुछ पढ़ते हुए ये सोचना कि अरे ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, या ये बात मुझे इस तरह से असर करती है,
ये याददाश्त के लिए अच्छा है।
बहुत अच्छा है।
ये सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट कहलाता है और ये मेमोरी बढ़ाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है।
यहाँ पर वर्किंग मेमोरी की बात भी करनी चाहिए शायद। ये क्या होती है?
हाँ, वर्किंग मेमोरी, इसे आप दिमाग का एक तरह का मेंटल वर्क बेंच या रफ पैड समझ सकती हैं।
अच्छा।
ये वो जगह है जहाँ हम जानकारी को थोड़े समय के लिए रखते हैं और उस पर एक्टिवली काम करते हैं। जैसे कोई फोन नंबर याद रखना है जब तक डायल ना कर ले।
हाँ, या मन में कोई कैलकुलेशन करना।
बिल्कुल, या कोई वाक्य पढ़ते हुए उसका मतलब समझना, ये सब वर्किंग मेमोरी में होता है। एलन बैडली जैसे रिसर्चर्स ने बताया है कि इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, मतलब एक बार में ज्यादा चीजें नहीं रख सकते इसमें, और ये पढ़ने, समझने, तर्क करने जैसी मुश्किल एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी है।
ठीक है, तो हमने देखा कि यादें बनती कैसे हैं, मजबूत कैसे होती हैं। अब उन्हें वापस याद करने की बात करते हैं, रिट्रीवल। क्या ये बस ऐसा है कि स्टोर से सामान निकाला और हो गया?
नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। पहली बात तो ये कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी एक जैसी नहीं है, उसमें भी कई तरह की यादें होती हैं।
अच्छा।
जैसे?
मोटे तौर पे दो मेन टाइप हैं। एक है स्पष्ट मेमोरी यानी एक्सप्लिसिट मेमोरी। ये वो यादें हैं जिन्हें हम होश में रहकर जानबूझकर याद कर सकते हैं।
उदाहरण?
इसके भी दो हिस्से हैं। एक एपिसोडिक मेमोरी, ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस की यादें हैं, जैसे कल रात खाने में क्या खाया था या पिछला बर्थडे कहाँ मनाया था।
और दूसरी है सिमेंटिक मेमोरी, ये दुनिया के बारे में हमारा जनरल नॉलेज है, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है या केले का स्वाद मीठा होता है, ये फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हैं।
ओके, ये हुई स्पष्ट मेमोरी। और दूसरी कौन सी थी?
दूसरी है निहित मेमोरी, यानी इम्प्लिसिट मेमोरी। ये वो यादें हैं जो हमारे व्यवहार पर असर तो डालती हैं, लेकिन हमें होश पूर्वक पता नहीं चलता कि हम कोई याद इस्तेमाल कर रहे हैं।
अरे, ये कैसे होता है?
जैसे हमारे स्किल्स हैं, साइकिल चलाना या टाइप करना, हमें सोचने नहीं पड़ता कि पैडल कैसे मारना है या उंगली कहाँ रखनी है, बॉडी को बस पता होता है। ये निहित मेमोरी है, आदतें भी इसी में आती हैं।
हाँ, बात तो सही है।
कुछ मरीजों के केस बड़े फेमस हैं इस मामले में, जैसे HM या क्लाइव वेरिंग। उनके ब्रेन डैमेज के बाद नई स्पष्ट यादें, एपिसोडिक और सेमांटिक बनाने की क्षमता खत्म हो गई थी, लेकिन वो पुरानी स्किल्स नहीं भूले थे और नई स्किल्स सीख भी सकते थे बिना ये याद रखे कि उन्होंने सीखी कब।
बाप रे, ये तो सच में गजब है। दिमाग कितने अलग अलग तरीकों से काम करता है। तो वापस याद करने यानी रिट्रीवल के प्रोसेस पर आते हैं, वो कैसे काम करता है?
एक बहुत जरूरी सिद्धांत है एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल।
ये क्या कहता है?
ये कहता है कि हम जानकारी को उसी माहौल या कॉन्टेक्स्ट में सबसे अच्छा याद कर पाते हैं जिसमें हमने उसे सीखा था। मतलब जिस सिचुएशन में एनकोडिंग हुई थी, वैसी ही सिचुएशन रिट्रीवल में मदद करती है।
अच्छा, जैसे अगर मैंने अपने स्टडी रूम में कुछ पढ़ा है तो शायद वहीं बैठकर वो मुझे ज्यादा आसानी से याद आएगा बजाय किसी और जगह के।
हाँ बिल्कुल, इसीलिए कहते ना कि जिस कमरे में पढ़ते हो कोशिश करो कि एग्जाम भी वैसे ही माहौल में दो।
या फिर पढ़ाई करते समय जो म्यूजिक सुन रहे थे उसे सुनते हुए शायद चीजें ज्यादा याद आएं।
हाँ, ये तो महसूस किया है कई बार।
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई खास धुन सुनी या कोई खुशबू आई और फटाक से कोई बहुत पुरानी याद ताजा हो गई। वो क्या है?
वो है रिट्रीवल क्यूज, याद दिलाने वाले संकेत। ये खुशबू या धुन या कोई जगह, ये एक क्यू का काम करती है और ये हमारी मेमोरी के नेटवर्क के एक छोटे से हिस्से को एक्टिवेट करती है और फिर उससे जुड़ी पूरी याद उभर आती है।
अच्छा,
तो ये क्यूज बहुत जरूरी हैं।
हाँ, बहुत।
ये बाहरी भी हो सकते हैं जैसे कोई गाना या जगह, और अंदरूनी भी जैसे हमारा मूड। अगर हम खुश मूड में कुछ सीखते हैं तो खुश मूड में ही वो ज्यादा आसानी से याद आता है।
कमाल है। अब जरा जैकोबी के काम पर आते हैं और मेमोरी की कमजोरियों या अजीब बातों पर। आपने कहा था कि उन्होंने ऑटोमेटिक और कंट्रोल्ड प्रक्रियाओं की बात की थी।
हाँ, जैकोबी का कहना था कि याद करने में या मेमोरी का इस्तेमाल करने में दो तरह के प्रोसेस शामिल हो सकते हैं। एक है ऑटोमेटिक प्रोसेस, ये बिना किसी कोशिश के अपने आप होता है, जैसे किसी चेहरे या नाम को देखकर बस ये महसूस होना कि हाँ, ये जाना पहचाना है। और दूसरा है कंट्रोल प्रोसेस, इसमें कोशिश लगती है, ध्यान देना पड़ता है, जैसे जानबूझकर ये याद करना कि अच्छा, ये चेहरा किसका है या ये नाम मैंने कहाँ सुना था।
और वो रातों रात प्रसिद्ध वाला एक्सपेरिमेंट इसी से जुड़ा था।
हाँ बिल्कुल, उसमें क्या हुआ कि लोगों को पहले दिन कुछ अनजान नाम दिखाए गए, अगले दिन उन्हें एक लिस्ट दी गई जिसमें कुछ असली फेमस लोगों के नाम थे, कुछ बिल्कुल नए अनजान नाम थे और कुछ वो नाम थे जो उन्होंने पिछले दिन देखे थे।
तो
हुआ ये कि लोगों ने कई बार उन नामों को भी फेमस बता दिया जो उन्होंने सिर्फ पिछले दिन लिस्ट में देखे थे।
अरे, ऐसा क्यों?
क्योंकि वो नाम उन्हें देखे देखे मतलब परिचित लग रहे थे, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस था, लेकिन उन्हें ये याद नहीं आया, ये उन्होंने कोशिश नहीं की याद करने की कि ये परिचित क्यों लग रहे हैं, यानी उन्होंने इन्हें कल लिस्ट में देखा था। ये कंट्रोल प्रोसेस था जो या तो हुआ नहीं या फेल हो गया, तो उन्होंने परिचित होने की फीलिंग को गलती से फेमस होना समझ लिया।
अच्छा, इसी को शायद सोर्स एमनीशिया कहते हैं, मतलब हमें ये तो याद है कि कुछ जानते हैं पर ये भूल गए कि पता कहाँ से चला था।
बिल्कुल, सोर्स यानी स्रोत की याददाश्त चली जाना, ये बहुत कॉमन है और यही बात हमें मेमोरी की फेलियबिलिटी, उसकी अचूकता के सवाल पर लाती है।
हाँ, हमने शुरू में बात की थी कि मेमोरी रिकंस्ट्रक्टिव होती है।
हाँ, सर फ्रेडरिक बार्टलेट ने बहुत पहले 1930s में एक क्लासिक स्टडी की थी वॉर ऑफ द गोस्ट्स नाम के कहानी पर। उन्होंने दिखाया कि जब लोग उस अजीब सी कहानी को याद करके सुनाते थे तो उसे बदल देते थे, वो उसे अपनी समझ अपने कल्चर के हिसाब से ज्यादा लॉजिकल बनाने की कोशिश करते थे,
मतलब अपने हिसाब से फिट कर लेते थे।
हाँ, उन्होंने इसे स्कीमा कहा। हमारे दिमाग में जानकारी के जो बने बनाए फ्रेमवर्क होते हैं, हम नई जानकारी को उन स्कीमा में फिट करने के लिए थोड़ा बदल देते हैं और याद करते समय भी यही होता है।
तो क्या इसका मतलब यह है कि गलत यादें भी बन सकती हैं? मतलब ऐसी चीजें याद आना जो हुई ही नहीं थी।
एक तो है मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट, मतलब कोई घटना हुई
उसके बाद किसी ने आपको उसके बारे में कोई गलत जानकारी दे दी, तो वो गलत जानकारी आपकी असली याद का हिस्सा बन सकती है।
अरे बाप रे।
हाँ, और कभी कभी तो बिना किसी बाहरी मिस इन्फॉर्मेशन के भी हमारा दिमाग खुद ही पूरी की पूरी झूठी यादें बना सकता है। ये जानना थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि मेमोरी कितनी लचीली, कितनी मैलिएबल है।
तो इस पूरी चर्चा से अगर मैं कुछ मुख्य बातें निकालनी हो, कुछ की टेक अवेज, तो वो क्या होंगी?
मेरे ख्याल से पहली बात तो यही कि मेमोरी कोई एक चीज नहीं है, ये कई अलग अलग सिस्टम्स का एक कलेक्शन है। वर्किंग मेमोरी अलग है, एपिसोडिक अलग, सिमेंटिक अलग, निहित मेमोरी अलग, सबका अपना काम करने का तरीका है।
ठीक है, दूसरी बात।
दूसरी और शायद सबसे अहम कि जानकारी को कैसे प्रोसेस किया गया है, ये ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इसके कि उसे कितनी देर पढ़ा गया या कितनी बार दोहराया गया। मतलब लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग वाली बात, गहरी मीनिंगफुल प्रोसेसिंग बेस्ट है।
हाँ, रटने से समझना बेहतर है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी
तीसरी के याद करना कोई वीडियो प्लेबैक नहीं है, ये एक एक्टिव रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। हम अक्सर घटनाओं को हूबहू याद नहीं रखते, बल्कि उनकी अपनी व्याख्या, अपना इंटरप्रिटेशन याद रखते हैं। इसीलिए तो एक ही घटना के गवाहों की कहानियां अक्सर अलग अलग होती हैं।
सही कहा। चौथी बात।
चौथी थोड़ी उल्टी लग सकती है कि भूलना हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार ये मेमोरी सिस्टम के डिजाइन का ही एक हिस्सा है जो उसे एफिशिएंट बनाता है। पुरानी गैर जरूरी जानकारी को हटाना पड़ता है ताकि नई जरूरी जानकारी के लिए जगह बने।
ये तो इंटरेस्टिंग है। और पांचवी बात।
पांचवी कि हमारी मेमोरी पर लगातार ऑटोमेटिक और कंट्रोल्ड प्रोसेस दोनों का असर पड़ता रहता है। कभी कोई चीज बस जानी पहचानी लगती है ऑटोमेटिक, तो कभी हम सोच समझ कर कुछ याद करते हैं कंट्रोल्ड। ये दोनों साथ साथ चलते हैं।
इन स्रोतों में कुछ बातें वाकई बहुत पावरफुल हैं। जैसे एक जगह कहा गया है, स्मृति कोई एक क्षमता नहीं बल्कि परस्पर संबंधित प्रणालियों का संग्रह है। ये पूरी सोच ही बदल देता है।
हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये, सीखने के दौरान प्रसंस्करण की गहराई अध्ययन में बिताए गए समय से बेहतर स्मृति प्रदर्शन का भविष्यवक्ता है। स्टूडेंट्स के लिए कितना बड़ा सबक है, घंटों रटने से अच्छा है कम देर समझ कर पढ़ना।
और एक और विचार जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया, स्मृति पुनर्प्राप्ति कंप्यूटर में फाइल खोलने जैसा नहीं है। ये एक पुनर्निर्माण प्रक्रिया है जो स्वयं स्मृति को बदल सकती है। मतलब हर बार जब हम कुछ याद करते हैं तो हम उस याद को शायद थोड़ा बदल भी रहे होते हैं।
है ना चौंकाने वाली बात। और आखिरी वाला भी कम नहीं, जिसे हम स्मृति विफलता कहते हैं, वो अक्सर स्मृति प्रणालियों के अपने डिजाइन के अनुसार काम करने का स्वाभाविक परिणाम होता है। ये भूलने को लेकर जो अपराध बोध होता है ना, उसे कम करता है। ये नॉर्मल है।
बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, इन्हें हम कैसे इस्तेमाल करें?
देखिए, शिक्षा में तो उसका सीधा एप्लीकेशन है। रटने पर जोर कम होना चाहिए और गहरी समझ, सवाल पूछने, कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने पर ज्यादा। और पढ़ाई को फैलाकर करना, जिसे स्पेसिंग इफेक्ट कहते हैं, वो एक साथ रटने से कहीं बेहतर है।
और अगर कोई अपनी पर्सनल मेमोरी सुधारना चाहे तो उसके लिए क्या टिप्स हैं?
सबसे पहली और जरूरी बात, ध्यान दें, पे अटेंशन। जब आप कुछ याद करना चाहते हैं तो उस पर फोकस करें, मल्टीटास्किंग से बचें।
ठीक है।
दूसरा, जानकारी को एक्टिवली प्रोसेस करें, उसे अपने शब्दों में दोहराएं, उसके बारे में सोचें, सवाल पूछें, उसे अपनी जिंदगी से जोड़ें, सेल्फ रेफरेंस, सिर्फ पैसिवली पढ़ें या सुने नहीं।
और
तीसरा, ये समझें और स्वीकार करें कि यादें परफेक्ट नहीं होती, वो बदल सकती हैं, उनमें गलतियां हो सकती हैं। इससे हम अपनी और दूसरों की यादों को लेकर थोड़े कम जजमेंटल और ज्यादा समझदार बन सकते हैं।
उम्र के साथ जो मेमोरी लॉस की चिंता होती है, उसके बारे में ये रिसर्च क्या कहती है?
ये एक ज्यादा होपफुल तस्वीर पेश करती है। ये नहीं कहती कि उम्र के साथ सब खत्म हो जाता है, बल्कि ये बताती है कि सही स्ट्रेटजीज अपनाकर, जैसे नोट्स बनाना, रिमाइंडर लगाना, दिमाग को एक्टिव रखना, इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। तरीके बदलने पड़ते हैं पर क्षमता बनी रहती है।
और जैसे कोर्ट कचेरी के मामलों में गवाहों की गवाही।
हाँ माप, इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। ये दिखाता है कि आई विटनेस टेस्टिमनी यानी चश्मदीद गवाही हमेशा भरोसेमंद नहीं होती, क्योंकि यादें रिकंस्ट्रक्टिव होती हैं, उन्हें बदला जा सकता है सवाल पूछने के तरीके से भी। किसी का कॉन्फिडेंस इस बात की गारंटी नहीं है कि उसकी याद सटीक है।
मेरे लिए तो इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ी सीख यह है कि हमारी मेमोरी काफी हद तक हमारे अपने हाथ में है। हम कैसे सीखते हैं, कैसे ध्यान देते हैं, ये सब तय करता है कि हमें कितना और कैसा याद रहेगा। ये जानना कि हम इसे बेहतर बना सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है।
और मेरे लिए सबसे फैसिनेटिंग पहलू ये है कि मेमोरी की यही रिकंस्ट्रक्टिव नेचर जो उसे कभी कभी अनरिलायबल बनाती है, वही उसे फ्लेक्सिबल और अडैप्टिव भी बनाती है। इसी वजह से हम नई चीज़ें सीख पाते हैं, बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढल पाते हैं और भविष्य के बारे में सोच पाते हैं।
हाँ, ये बात भी सही है।
हर बार याद करने पर थोड़ी बदल जाती हैं, तो क्या हमारा अतीत वास्तव में वैसा ही है जैसा हम उसे याद करते हैं, या हम हर याद के साथ उसे थोड़ा थोड़ा दोबारा लिख रहे हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।